यह प्रवचन गुरु शिष्य संबंध तथा ब्राह्मणत्व की योग्यताओं पर आधारित है, जो कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज हम आपको भागवत गीता के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक सुनाएंगे। भागवत गीता के उपदेश के आधार पर हम जीवन को सफल बना सकते हैं और हम सब व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए गीता के उपदेश को समझने के लिए। गीता का उपदेश है सरल। आज का जो श्लोक हमने चुना है उसमें भगवान बता रहे हैं किस प्रकार हम मन के द्वारा तपस्या का पालन कर सकें। तपस्या शब्द का उपयोग अनेक स्थानों में प्राप्त होता है शास्त्र में, जैसे कि भागवत में कहा गया है तपस्व परम ज्योतिर भगवतम अधोक्षजम। भगवान कहते हैं कि उनका समझना अधोक्षजा है, बहुत कठिन है, पर अगर कोई तपस्या का पालन करे तो फिर वो उन्हें समझ सकता है। और जब भक्तों के गुणों का भी वर्णन होता है तो तपस्या शब्द सुना जाता है। आज समाज में तपस्या से सब डरते हैं, सच बात है हाँ, सब डरते हैं। अगर आपको बोला जाए कि भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है और कोई नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं, तो हम तैयार हो जाएंगे। तो जब ये कहा जाता है कि अगर भगवान के धाम लौटना है तो कुछ तपस्या का पालन करना पड़ेगा, कुछ कीमत भरनी पड़ेगी, तो हम घबरा जाते हैं। अफसोस की बात है, पर भौतिक तपस्या और आध्यात्मिक तपस्या में अंतर है। कई बार आप किसी शहर में नहीं रहना चाहते, किसी जगह नौकरी धंधा नहीं करना चाहते, तो जबरदस्ती करना ही पड़ता है, तो वो भी एक रूप की तपस्या ही है। पर जब हम शास्त्र में तपस्या शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ है आध्यात्मिक तपस्या, तपस्या भागवत प्राप्ति के लिए। एक अंतर यह है कि आध्यात्मिक तपस्या के द्वारा आनंद प्राप्त होता है और भौतिक तपस्या के द्वारा कष्ट। वैसे तो समाज में कष्ट है ही, पर आध्यात्मिक तपस्या का लाभ का आध्यात्मिक लाभ है और असली सुख पहुंचाता है। तो एक श्लोक हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, ये है 16वां श्लोक 17वें अध्याय का। मना प्रसाद सौम्यवाम मौनमात्म विनिग्रह भाव संस्कृत इत्येतत् तपो मना समुचते ओम ज्ञातमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविश्रम सत्कामेन भूतले स्वयं रूप कदामयम् ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपां सगजतम् सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवभूतं सहितं कृष्णचैतन्यधीमं श्री राधा कृष्ण प्रधान सहगना ललिता श्री विशाखानुतम श हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु गोपेश गोपिका संत राधा संत नमोस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावेश्वरी जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण इसी अध्याय में भगवान बता चुके हैं शरीर की क्या तपस्या होनी चाहिए जीव की और अब मन की तपस्या के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। थोड़े समय पहले हमने शरीर की तपस्या के श्लोक की चर्चा की थी और जीव की तपस्या की चर्चा भी की थी। मन की चर्चा की तपस्या का वर्णन यहां नहीं किया था तो मैंने आज सोचा कि मन की तपस्या की चर्चा आज की जाए। भगवद गीता के छठे अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग, अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये बता रहे हैं कि हमें मन को जीतना चाहिए, मन को जीतना चाहिए, मन पर वश रखना चाहिए। आज कई बार लगभग रोज ही कोई ना कोई मिलता है जो यही कहता है स्वामी जी हम मन हमारा भटकते रहता है क्या किया जाए। हाँ, मन के विषय में पढ़ा जाता है कि मन तो बहुत तेजी से दौड़ सकता है, इतनी तेजी से दौड़ सकता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक मिनट में ही मन अमेरिका भाग सकता है और अगले मिनट लंदन पहुंच सकता है, अगले मिनट पेरिस पहुंच सकता है। और मन को किधर किसी स्थान में जाने के लिए ना तो आपको टिकट खरीदनी पड़ती है ना वीजा लेना पड़ता है, ठीक है ना? तो मन को किधर भी दौड़ सकता है। पर इस संत ने कहा है कि मन को जीतने का प्रयास करो, इसलिए भगवान कहते हैं मन मन भाव मद भक्तो मद्याजी मन नमस्कुरु। आपने शायद ये श्लोक सुना होगा पहले, भगवान कहने हैं मन के द्वारा मुझे जीतो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरे सामने प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो, मेरे उपासक बनो। क्या कारण है? कारण यह है कि मन को अगर आपने वश में कर लिया तो फिर आध्यात्मिक जीवन सरल बन जाता है, और अगर आपने मन को नहीं जीता तो आध्यात्मिक मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हमें अनुभव करनी पड़ती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं छठे अध्याय में कि जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया, जिसने मन को वश में कर लिया, वो मुझे समझ सकता है। उसके लिए हार और जीत, सर्दी गर्मी सब एक बराबर है, आदर अपमान। और जिसने मन को नहीं जीता, जो मन के द्वारा केवल यही सोच रहा है कि कैसे भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति वगैरह प्राप्त हो, तो जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे थे, तो हमारा जो मन है सदा निराश रहेगा। तो मन को वश में लाने के लिए अनेक उपाय हैं, जैसे कि जब प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा, बेटा ये बताओ आज हम पाठशाला में क्या पढ़ के आए हो? पिता की तो ये उम्मीद थी कि बेटा कहेगा कि आप हो सर्वश्रेष्ठ, तो बेटे ने सुना दिया नवदा भक्ति का ज्ञान। आप सब शायद परिचित हो नवदा भक्ति से। नवदा भक्ति का ज्ञान शास्त्र में भगवतम में प्राप्त होता है, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आश्रम वंद्यम दशम सख्यम आत्मनिवेदम। तो प्रहलाद महाराज जी ने भक्ति के नौ साधनों का वर्णन किया, जैसे कि कई बार लोग जानना चाहते हैं या भगवान की शरण में कैसे आए या भगवान की शरण में आने का अर्थ क्या है। सच बात है, तो इसी विषय पर एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कहते हैं कि जीवन तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है, और वो तुलना देते हैं कि एक कमल के फूल पर अगर पानी का बूंद हो, किसी समय भी वो नीचे गिर सकता है। इस कारण के हर मंदिर में सुबह के समय भगवत का ध्यान होता है और शाम के समय भगवत गीता के एक श्लोक का। आज सुबह हम भगवतम के 9वें स्कंद पर उपदेश दे रहे थे, जिसमें एक संक्षेप में महाराज निम्मी की कथा है। महाराज निम्मी महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे। महाराज इक्ष्वाकु का के विषय में हम भगवत गीता में भी पढ़ते हैं कि ये ज्ञान सूर्य के देव विवाहस्थान से महाराज इक्ष्वाकु तक पहुंचा था। पर महाराज इक्ष्वाकु का राज्य था इस पृथ्वी पर त्रेता युग के आरंभ में, दूसरे शब्दों में लगभग 20 लाख साल पूर्व। 20 लाख इस रूप से 12 लाख साल तो गुजर गए त्रेता युग के, 8 लाख साल द्वापर युग के, और कलयुग के लगभग 5 लाख साल बीत गए। तो 20 लाख पहले, 20 लाख साल पहले ये गीता का ज्ञान इस पृथ्वी पर था। तो महाराज निम्मी उनके बेटे थे। महाराज निम्मी राजा थे, तो उनके मन में एक ही विचार था, भगवत प्राप्ति। बस प्राचीन समय में जो हमारे नेता होते थे वो भगवान के भक्त भी थे, इसलिए उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। महाराज निम्मी, महाराज इक्ष्वाकु, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, आजकल तो समाज के जो राजनीतिक नेता हैं, ना तो उनमें धार्मिक रुचि है ना ही वो प्रजा की चिंता करते हैं। तो महाराज निम्मी राजा थे, महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र, उनके हृदय में केवल यही ज्ञान, यही इच्छा थी कि एक पल कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक समय महाराज निम्मी यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का साधन था यज्ञ, जैसे कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन है हरि नाम संकीर्तन। तो यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप हमारे यज्ञ का कृपा करके मुख्य पुरोहित बनिएगा। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं बनने को तैयार हूं, पर इस समय मैं थोड़े समय के लिए व्यस्त हूं। क्यों? क्योंकि इंद्र देवता भी यज्ञ कर रहे हैं और मुझे उनके यज्ञ में मुख्य पुरोहित का कार्य करना है। तो उन्होंने कहा तुम जरा इंतजार करो अपने यज्ञ करने के लिए, मैं इंद्र का यज्ञ समाप्त करके आता हूं, फिर तुम्हारे यज्ञ में मुख्य पुरोहित बनूंगा। तो महाराज निम्मी ने कहा मैं आपकी राह नहीं देख सकता, आप कह रहे हो कि मुझे इंद्र देवता के यज्ञ में पुरोहित रहने दो और उसकी समाप्ति पर मैं आऊंगा आपका यज्ञ आरंभ करने के लिए, पर इस जीवन का क्या भरोसा? उन्होंने कहा कि जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, ये जीवन तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी राह नहीं देख सकता, और उन्होंने दूसरे पुरोहितों के सहयोग से यज्ञ आरंभ कर दिया। उन्होंने वशिष्ठ से कई राह नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि आप थोड़ी देर के बाद आओगे, और जीवन का क्या भरोसा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही समझाते हैं कि किस प्रकार ये मनुष्य जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। इसलिए चाणक्य पंडित जी ने कहा है कि हमें तो एक पल एक क्षण कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का अगर दुरुपयोग करो तो सारे विश्व के धन से उसे वापस खरीद कर नहीं ला सकते। तो गोविंद दास जी कहते हैं कि जीवन तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है, जैसे महाराज निम्मी ने कहा कि जीवन तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है, मैं क्यों आपकी राह देखूं। कई बार हम सोचते हैं कि स्वामी जी जो आप कह रहे हो ठीक है, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करेंगे, पर और 20 साल बाद और 10 साल बाद, अभी हमें रिटायर होने दो, अभी हमें बच्चों की शादी करने दो, ये करने दो, वो करने दो, अरे भाई जिंदगी का क्या भरोसा। महाराज निम्मी ने तो कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो गोविंद दास जी कहते हैं किसी न किसी रूप से हरि की शरण हमें लेनी चाहिए, और हरि की शरण लेने के लिए क्या उपाय देते हैं, यही नर्मदा भक्ति का। तो नर्मदा भक्ति के विषय में हम सुनते हैं श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम का तो अर्थ है भगवान का स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनका सोचना, उनके उपदेश का सोचना। तो पहले प्रहलाद महाजी ने कहा श्रवणम और कीर्तनम। श्रवणम का अर्थ है कान से सुनना और कीर्तनम का अर्थ है जीव से उच्चारण करना। तो कान से सुनना, कान से क्या सुनना चाहिए? सारा दिन हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन सुनते हैं, और जीव से क्या बोलते हैं? वही जो सुनते हैं उसी का हम उच्चारण कर देते हैं। सुनते हैं फिल्मी गाना तो हम भी फिल्मी गाने गाते हैं, सोचते हैं कि हम भी कलाकार जैसे प्रसिद्ध बन जाएंगे। तो श्रवणम कीर्तनम, और क्योंकि श्रवणम है भौतिक विषय, जीव से उच्चारण भौतिक विषय का, तो विष्णु स्मरणम की जगह क्या है? माया स्मरणम। सोचते भी हैं उसी प्रकार, उसी प्रचार के जो सुनते हैं उसी विषय का विचार रहता है, और जब उसी विषय का विचार रहता है तो भावना भी ये रहती है क्या कि उसी प्रकार के कार्य में हम जुड़े रहें। अंत में ये देखा जाता है कि हम जीवन का जो उद्देश्य है उस विषय में कुछ उन्नति नहीं कर पाते। तो इसीलिए संतों की संगत का हमें लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन के हर केंद्र में सुबह के समय अध्ययन शास्त्रों का और शाम के समय आप लोग जब दोपहर को आते हो जब भी शास्त्रों का अध्ययन, एक रूप से आप कह सकते हो कि इस्कॉन युग के जो केंद्र हैं ये केवल मंदिर नहीं पर पाठशाला महाविद्यालय है, जहां की व्यक्ति प्रवेश करता है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वैसे तो शिक्षा को अनेक स्थानों में प्राप्त हो रही है, पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, पर जो शिक्षा यहां प्राप्त होती है वो दूसरे स्थानों में प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें उन व्यक्तियों की संगत का लाभ उठाना चाहिए, इनके द्वारा वो उपदेश मिले जिससे हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं किस प्रकार से हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस 17वें अध्याय जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग, जैसे आप जानते हो गीता में 18 अध्याय हैं, और इसका है इस 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। तो इस श्रद्धा के विभाग इस अध्याय में भगवान बड़ी गहराई से हमें सब समझा रहे, शरीर से कैसे तपस्या करो, जी से कैसे तपस्या करो और मन से कैसे तपस्या करो। अगर हमने इन तीन चीजों पर वश कर लिया, शरीर, जी और मन, फिर तो आपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और अगर आप इन चीजों पर वश नहीं कर सकोगे तो फिर कठिनाई अनुभव करोगे। तो भगवान कह रहे हैं जैसे आज का विषय है मन की तपस्याएं, तो मन की तपस्याएं में सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं, मन प्रसाद, जिसका अर्थ है संतुष्ट, संतोष। क्या कारण है कि हम मन को वश में नहीं ले पाते? एक कारण यह है कि हमारा मन संतुष्ट नहीं है। हम सदा यही चाहते हैं और, सच बात है। पहले इच्छा रहती है कि लखपति बन जाओ, जब लखपति बन जाते हो तो क्या इच्छा रहती है, करोड़पति। करोड़पति जब बन जाओ तो फिर क्या इच्छा रहती है, अरबपति के बाद फिर देश के नेता, विश्व के नेता। हम कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। जिस व्यक्ति ने हरि नाम को स्वीकार किया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, एक समय एक संत महात्मा थे जो ब्रज में रहते थे और हरि नाम में जुड़े हुए थे, दिन रात हरि नाम में। एक समय एक ब्राह्मण ने एक देवता को संतुष्ट करके एक वर प्राप्त किया। ब्राह्मण की इच्छा थी कि मैं धनी बन जाऊं, तो देवता जी ने उन्हें वर दिया कि वो ब्रज में जाकर एक संत से अपना परिचय देकर उनसे मांगे। तो वो ब्राह्मण गए उस संत के पास, कहा कि मैंने देवता जी को अपने यज्ञ उस तपस्या से प्रसन्न किया था, उन्होंने मुझे ये वर दिया है कि आप मेरी इच्छा को पूरा करोगे। क्या इच्छा? कि मैं धनी बन जाऊं। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है। वो कचरे का डब्बा दिखता है तुम्हें, उसके नीचे एक परस पत्थर है, परस पत्थर ले लो, उसमें धन की तुम धनी बन जाओगे। तो व्यक्ति ब्राह्मण गया वहां, परस पत्थर दिखा, फिर परस पत्थर का उसने उपयोग किया देखने के लिए सच है कि झूठ। और सच मुझे कि जिस ही को जिस वस्तु को छूता था वो वस्तु सोना बन जाती थी। बहुत खुश हुआ, अब मैं विश्व का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे मिला, जिसने उसे पूछा ये परस पत्थर तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तो उसने पूरी कथा सुनाई कि मैंने प्रसन्न किया था देवता को, फिर वो संत के पास गया, संत मैंने सबसे कीमती चीज मांगी। संत को पता था इस व्यक्ति को इस समय भौतिक इच्छाएं हैं। तो उस संत को, उस ब्राह्मण ने जब कहा कि संत ने इस परस पत्थर को कचरे के डब्बे के नीचे रखा था, तो उसने क्या कहा कि अवश्य ही इस संत के पास कोई और कीमती वस्तु भी होगी, क्योंकि आप कीमती वस्तु को कचरे के डब्बे में तो नहीं रखते। हाँ, तो जब ये गए वापस, उस संत से उन्होंने मांगा, क्या मांगा? ये दीजिएगा जो सबसे कीमती वस्तु है। उसने कहा कि अगर ये सबसे कीमती वस्तु थी तो आपने कचरे के डब्बे में क्यों रखा था इसे? जरूर अवश्य ही इससे ज्यादा महंगी अच्छी वस्तु आपके पास कोई होगी। तो फिर उस संत ने क्या दिया उन्हें? ये हरि नाम। वो हरि नाम लेकर वो बहुत ही संतुष्ट रहे। तो ये जो हरि नाम लेने से हम असली संतुष्टता प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक स्थिति में जितना भी हम प्रयास करें, जितनी भी सफलता प्राप्त करें, हमें हमेशा ऐसा ही लगेगा कि हमें और कुछ प्राप्त होना चाहिए। असली संतुष्टता प्राप्त हो सकती है जब आप ये समझो सबसे पहले कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा, कष्ट हमें अनेक रूपों से सहना पड़ेगा। जन्म मरण, बुढ़ापा, बीमारी, मन का कष्ट, दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट, प्रकृति का कष्ट, सात प्रकार के कष्ट हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए महाराज निम्मी ने कहा कि उन्होंने देवताओं को कहा मुझे भौतिक शरीर मत दो, मुझे भौतिक शरीर नहीं चाहिए। तो ये जो भौतिक शरीर है वो केवल कष्ट हमें पहुंचाते रहता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो किसी न किसी रूप से ये प्रयास करता है कि हर समय, हर पल, हर क्षण का सदुपयोग किया जाए भगवान की सेवा में। तो भगवान कह रहे हैं मन की एक तपस्या ये है कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे कहते हैं सरलता। जैसे आपने सुना होगा आध्यात्मिक वादियों का विचार है सादा जीवन और ऊंचा विचार। सादा जीवन बिताने का प्रयास करोगे तो फिर समय आए रहेगा भक्ति की विधियों के पालन के लिए। और अगर हम यही सोचेंगे और प्राप्त करना चाहिए तो क्या परिणाम होगा? समय ही नहीं मिलेगा भक्ति के लिए। आप इतने व्यस्त रहोगे दुनियादारी में कि भजन के लिए समय ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक वादियों का यह भाव रहता है सादा जीवन और ऊंचा विचार। ऊंचा विचार से क्या अर्थ? ऊंचे विचार से ये का ये अर्थ है कि सदा यही सोचना किस प्रकार जीवन के भाव या उद्देश्य को आप प्राप्त कर सको, यह है ऊंचे विचार का अर्थ। तो सादा जीवन का यह अर्थ नहीं कि आप फटे हुए कपड़े पहनने लग जाओ या जो इस पेड़ के नीचे रहो। खैर, सारा जीवन का यह अर्थ है कि जितनी जो आवश्यकता है उन्हें प्राप्त करो, पर आवश्यकता से अधिक के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं सादा जीवन। भक्तों का यह भाव है भगवान के लिए सबसे सुंदर प्रबंध होना चाहिए। कई बार लोग हमें दोष देते हैं, खास करके इस्कॉन के भक्तों को, कहते हैं आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो, तो आप तो कह रहे हो सादा जीवन। ये जो बड़े मंदिर बनते हैं हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, ये तो भगवान के लिए। भगवान की तो कोठी सबसे खूबसूरत होनी चाहिए, सच बात है। दिल्ली में जो सबसे बड़ी कोठी है उससे बड़ी होनी चाहिए। पर अपने रहने के लिए सादा जीवन, जैसे कि रूप और सनातन गोस्वामी, आपने वृंदावन के 6 गोस्वामियों के विषय में सुना होगा। ये चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत ही प्रिय भक्त थे, बहुत ही प्रिय भक्त। ऐसे तो भौतिक दृष्टि से बहुत पढ़े लिखे थे, नवाब हुसैन शाह, आज से 500 साल पूर्व सबसे धनी राज्य थे पृथ्वी पर, उनके लगभग प्रधानमंत्री थे और खजांची, पर उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग कर वो वृंदावन में गए और वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार अनेक ग्रंथों की रचना की, उन स्थानों की स्थापना की जहां की भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, और अनेक मंदिर भी बनाए। भगवान के लिए तो उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, मदन मोहन, राधा दामोदर, पर अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए कहा कोई ठिकाना भी नहीं था। रोज अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे, पर दूसरों को, राजाओं को प्रेरणा देकर भगवान के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए। एक समय सनातन गोस्वामी जी, ये बिल्कुल यमुना के किनारे एक झोपड़ी में मदन मोहन मूर्ति की पूजा कर रहे थे, वहां सामने से एक नमक का व्यापारी नाव में जा रहा था, क्योंकि झोपड़ी के सामने ही वो उनकी नाव फंस गई मिट्टी में। बहुत प्रयास किया नाव को निकालने के लिए, नहीं निकले। तो किसी ने कहा वहां भगवान की मूर्ति है, तो उसने कहा चलो मैं भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करता हूं। व्यापारी था, भगवान कहते हैं गीता में 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं, 4 स्थितियों में हम भगवान के शरणागत होते हैं। कौन सी हैं 4 स्थितियां? 1 जिसको धन चाहिए, हाँ, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी, चौथा दुखी, 4 चतुर्विदा भजन्ते माम, 4 स्थितियों में व्यक्ति मेरी शरण में आता। तो ये नमक का व्यापारी फंस गया था, ना फंस गई थी, धन भी चाहिए था और दुखी भी था। तो वो गए मदन मोहन जी को प्रार्थना की उन्होंने, वो जैसे ही वापस लौटे तो नाव चिकड़ से निकल गई थी। फिर वो निगमा के व्यापारी आगरा पहुंच पाए, उन्होंने अपना धंधा किया और धंधा करके बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाकर वो आए वृंदावन में, उन्होंने बड़ा विशाल मंदिर बनाया। तो सरल जीवन का ये अर्थ नहीं कि भगवान को भी हम झोपड़ी में ही रखें। भगवान के लिए तो यही भावना रहती है कि हम अच्छे से अच्छा महल बनाएं, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो भगवान के लिए तो सबसे सुंदर स्थान होना चाहिए जिसके द्वारा आप लोगों को आकर्षित कर सको। सादा जीवन का अर्थ है कि हम स्वयं सादे जीवन बिताएं, पर भगवान के लिए तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छी वस्तु अर्पण करें। जैसे एक समय हम किसी को कह रहे थे कि भगवान के लिए आप भगवान की मूर्तियां हैं तो भोजन लगाओ अच्छी तरह। वो कहने लगे सज्जन भाई, आप कहते हो भगवान के लिए कचौड़ी बनाओ, पकोड़ा बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, हलवा बनाओ, पर भगवान तो स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ये इन सब चीजों की क्या आवश्यकता। कई बार लोगों का यह विचार रहता है भगवान को तो हम जल अर्पण कर देंगे और एक पत्ता और हम खाएंगे चांदी की थाली में समोसा पकोड़ा इत्यादि। नहीं, भगवान कहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार मेरी सेवा करो। अगर आपके पास और ज्यादा सुविधा नहीं है तो जल भी अर्पण कर दो, पर कुछ न कुछ तो मुझे अर्पण करो। देखो तो भगवान इतने दया दयालु है, वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कहते हैं मुझे पत्ता भी दे दो, फूल, जल, पर एक शर्त है। क्या है वो? प्रेम और भक्ति के साथ। प्रेम और भक्ति के साथ अगर भक्त एक पत्ता भी देगा तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने भक्ति का मार्ग इतना सरल बना दिया है इस कलयुग में। तो भगवान कह रहे हैं मन की तपस्या क्या है, सरलता। अगर मन में सादे विचार रहेंगे तो अवश्य ही आध्यात्मिक जीवन के लिए भी समय आप ढूंढ पाओगे। पर अगर मन में एक सारा ये विचार रहेगा अभी नई ओपल गाड़ी आई है बाजार में ये खरीदना है, फिर एक नई गाड़ी आ देने नहीं ये गाड़ी खरीदनी है, ये खरीदना है, ये बड़ा मकान लेना है, ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए, तो आध्यात्मिक विषय का चिंतन असंभव रहेगा और आध्यात्मिक जीवन के लिए समय भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं सरलता। आगे कहते हैं गंभीरता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में गंभीरता के विषय में समझाते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या कहा गंभीरता का क्या अर्थ? गंभीरता का अर्थ है कि सदा ये सोचते रहना कि जीवन के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करोगे। जैसे भक्त और भक्त में एक और अंतर क्या है, भक्त जो चीज को देखता है सोचता है कि मैं इसका लाभ कैसे उठा सकूं। सच बात है, भक्त ये सोचता है किस प्रकार से हर चीज का उपयोग किया जा सकता है भगवान की सेवा में। जैसे अगर भक्त फूल देखता है खूबसूरत फूल, तो भौतिकवादी तो सोचेगा किस प्रकार ये फूल मैं अपनी प्रेमिका को अर्पण कर सकूं। भक्त सोचेगा किस प्रकार इस फूल से भगवान का मैं हार बना सकूं। अगर किसी भौतिकवादी में कोई कला है तो कहेगा इस कला से मुझे अच्छी अच्छी पेंटिंग करके धन कमाने दो। भक्त में अगर कोई कला है तो भगवान की तस्वीर बनाएगा, कोई भौतिकवादी आर्टिस्ट नहीं कर सकता। पर ये सारी पेंटिंग्स की है भक्तों ने, और आप शायद मानोगे नहीं भारतीय भक्तों ने नहीं, ये सब की है रूसी भक्तों ने। ये सारे आर्टिस्ट जिन्होंने किया है ये रूसिया के थे और कजाकिस्तान मुसलमान देश के थे, उन सब भक्तों ने ये सारी पेंटिंग्स की है। और आप देख सकते हो बड़े प्रेम के साथ है ना, इतनी सुंदर पेंटिंग आपको बाजार में नहीं देखेंगे क्योंकि ये भक्तों ने किए हैं। तो भक्त के पास अगर कोई कला हो योग्यता हो वो सोचता है मुझे इसको भगवान की सेवा में उपयोग करने दो। तो गंभीरता का ये अर्थ है कि सदा ये सोचते रहना कि किस प्रकार आप जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सको। चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यास। भगवान गीता में उदाहरण देते हैं जैसे कमल का फूल जल में होते हुए जल को छूता नहीं। ये गुरु जी उदाहरण देते थे कि एक चूहा है जो वो बिल्ली को देखता है तो घबरा जाता है, अब मेरी मौत आ गई। और जब बिल्ली का बच्चा माँ उसको उठाती अपने दांतों में तो उसे क्या अनुभव होता है, सुरक्षा। तो वही दांत एक के लिए सुरक्षा का साधन और दूसरे के लिए मृत्यु। तो उसी प्रकार आप गंभीरता और सरलता के साथ इस भौतिक संसार में रह सकते हो अगर आपका लक्ष्य भाव उद्देश्य ठीक हो। तो भक्त जो है गलत जो जिस चीज का उपयोग किया कर सकते हो भगवान की सेवा में उसको त्यागता नहीं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं इसे युक्त विराग्य। युक्त विराग्य का अर्थ है कि बुद्धि से जो सुविधा भगवान दे उनको भगवान की सेवा में लगाना। जैसे जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि सब कुछ झूठा है मिथ्या, तो सब छोड़ दो। गुरु जी एक उदाहरण देते थे कि समझो एक 100 रुपए का नोट हो, आजकल तो 100 रुपए की नोट की ज्यादा कदर नहीं है, 500 रुपए का नोट मान लो, समझो 500 रुपए का नोट हो सड़क में। एक व्यक्ति तो देखकर ये कहेगा मुझे जेब में डालने दो, ठीक है, वो तो वह चोर, दूसरे की संपत्ति वो अपने जेब में डालना चाहता है। दूसरा व्यक्ति वो 500 रुपए का नोट देखेगा कहेगा मेरा नहीं है ये यहीं रहने दो। तो ये व्यक्ति भी ज्यादा उस बुद्धिमान नहीं है क्योंकि दूसरा व्यक्ति आकर उसको उठा लेगा और जेब में डाल लेगा। तीसरा व्यक्ति एक सोचता है हाँ 500 रुपए का नोट है मुझे इसके मालिक को खोजने दो, मैं मालिक को लुटा दूंगा। तो तीनों में कौन अच्छा है? तीसरा वाला। तो वो है भक्त की बुद्धि। भक्त अगर कोई सुविधा प्राप्त भी करता है तो सोचता है इसको भगवान की सेवा में उपयोग करने दो। इस प्रकार वो उसके प्रभाव में भौतिक समाज के प्रभाव से बच जाता है। जैसे कमल का फूल जल में है और जल नहीं छूता। तो गंभीरता, हमें गंभीर रहना। गंभीर का ये अर्थ नहीं कि आप कभी हंसो नहीं, आप हंसो पर भौतिक विषयों के संबंध में नहीं।
हमेशा हमें गंभीर रहना चाहिए जीवन के उद्देश्य के विषय में। जैसे हम महाराज निम्मी की कथा को सुना रहे थे, महाराज निम्मी ने कहा नहीं मैं एक पल भी और राह देखने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, मुझे मेरा यज्ञ अभी शुरू करना है, मैं राह देखने को तैयार नहीं हूं। कई बार अगर कोई आपसे कहे ठीक है अभी भक्ति आरम्भ मत कर, 10 साल और राह देख लो, तो आपको ये कहें महाराज निम्मी की कथा सुनानी चाहिए। जैसे कि महाराज खटवंगा की कथा है इसी विषय के ऊपर। महाराज खटवंगा ने एक समय एक राजा थे, बड़े धार्मिक, उन्होंने देवताओं का सहयोग दिया था असुरों को हराने में। तो असुरों ने कहा, जब असुरों की जीत हुई तो उन्होंने कहा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या सेवा। तो महाराज खटवंगा ने कहा कि आप मुझे ये बता दो कि मेरे जीवन में अभी कितना समय बच गया है। जैसे कई बार आप ज्योतिषियों के पास जाते हो ना, मेरी आयु कितनी लंबी है बताइए, तो जोशी जी बता देते हैं हाँ तुम्हारी तो लंबी आयु है, तो हम खुश हो जाते हैं। तो देवताओं के पास योग्यता है जो साधारण व्यक्ति के पास नहीं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मरा भी हो तो वो देवताओं ने जीवित कर सकते हैं, और कई उदाहरण है इस विषय के ऊपर। तो महाराज खटवंगा को देवता ने कहा कि अभी तो आपके जीवन में केवल कितना समय बच गया, एक पल एक क्षण बच गया बस। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे ये वर दो कि मैं इस पृथ्वी पर लौट के भगवान का स्मरण कर सकूं, क्योंकि जहां भी हमारा मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा, इसीलिए मन को जीतना अवश्य है मृत्यु के समय। उदाहरण के लिए अगर मन के द्वारा ये सोच रहे हो अरे इतना सुंदर मकान मुझे छोड़कर जाना पड़ रहा है, इतनी मेहनत से ये मकान बनाया और अब छोड़ना पड़ेगा मकान, तो भगवान इतने दया दयालु हैं वो आपको सुविधा देंगे उसी मकान में लौटने के लिए। तो आप लोग स्वामी जी ये तो बड़ा अच्छा है, फिर हम भक्ति क्यों करें, हम उसी मकान में लौट जाएंगे, पर मालिक के रूप में नहीं, किसी कीड़े खटमल चीटी के रूप में उसी मकान में। तो उसी मकान में रह रहे हो पर भय के साथ रह रहे हो। भौतिक संसार में भय है, जैसे मछली तालाब में, मछली को हमेशा भय रहता है, आपको पता है मछली को यह भय रहता है कि मुझे कोई बड़ी मच्छी नहीं खा जाए, तो ये भय रहता है सबके मन में। तो जो भगवान के शरणागत हो वो भय से रहित हो जाता है। तो गंभीरता आत्मे आत्म स्वयं और जीवन की शुद्धि। So, आत्मसंयम तो बहुत अवश्य है, जैसे कि साधारण स्थिति में आप देखते हो अगर आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करो तो आपको दंड भुगतना पड़ता है, पर अगर एक जानवर स्वीकार नहीं करे पालन नहीं करे तो उसको दंड भुगतना पड़ता है। सरल उदाहरण, सड़क में कोने कोने में लाल बत्ती है, हरी बत्ती है, पीली बत्ती है, हाँ तो लाल बत्ती का मतलब है रुको आगे मत बढ़ो, और हरी बत्ती जब आती है तो मतलब बढ़ सकते हो। तो आप जब लाल बत्ती देखते हो आप रुक जाते हो, पर जानवर नहीं रुकता। तो लाल बत्ती के होते हुए जानवर अगर सड़क की दूसरी तरफ जाए तो उसको पुलिस वाले पकड़ते हैं नहीं, आप जाओ तो पकड़ लेंगे, और आप मोटर में हो तो आपको टिकट मिल जाएगी। हाँ क्यों, सरकार नियम बनाती है किस लिए, मानव समाज के लिए, पशु समाज के लिए तो नहीं बनाती। तो इसके द्वारा क्या समझते हो आप कि मानव जीवन जो है जिम्मेदारी का जीवन है। तो वही विचार शास्त्र में है, मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन है, इसलिए मन और इंद्रियों को किसी न किसी रूप से वश में लाना चाहिए। तो आत्मा स्वयं, और आत्मा स्वयं कैसे करोगे, बुरी आदत कैसे छुपती है, कैसे दूर होती है। आप एक बुरी आदत को त्याग सकते हो अगर आपको अच्छी आदत पड़ जाए। जब आप सब छोटे थे तो आप सब भूल गए हो गए, पर मुझे पक्का पता आप सब अंगूठा चूसते थे। हाँ आप सब चूसते थे अंगूठा, हमने आपकी तस्वीर देखी थी अंगूठा चूसते हो। तो सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं। हाँ पर जैसे ही आप उम्र में बढ़ते हो माता पिता क्या कहते हैं, मत चूसो बुरा दिखेगा लोग हंसेंगे, तो जबरदस्ती आपको वो आदत छुड़ा देते हैं। कोई शैतान बच्चा हो तो शैतानी से रोकने के लिए माता पिता उसको कोई अच्छा काम देते हैं। तो उसी प्रकार इन इंद्रियों को आप वश में ला सकोगे जब आप सीखो इनको उपयोग करना भगवान की सेवा में। अगर ये नहीं सीखोगे तो कहां से सफलता प्राप्त करोगे। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका जैसे देश में सरकार अरबों डॉलर खर्च रही है लोगों को ड्रग से दूर ले जाने के लिए। रशिया जैसे देश में, रशिया में लोग शराब बहुत पीते हैं तो सरकार इतना प्रोपेगेंडा करती है शराब कम पियो कम पियो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, पर वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपके हरियाणा में एक कार्यक्रम हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जिसमें हम भी थे उस, और हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्यपाल सब थे, तो सब वो कह रहे थे मुख्यमंत्री की बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, देखो उन्होंने क्या क्या कर दिया। हमने तो स्पष्ट कहा प्रवचन में कि जब तक आप लोगों को कोई दूसरा पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे वो शराब वगैरह वो नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने असली बंधन लगाना है तो लोगों को हायर टेस्ट दो, कोई अच्छा उपदेश दो, फिर वो गलत कामों को त्यागेंगे। तो आत्मा स्वयं जब संभव हो सकता है जब आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करने का प्रयास करो, जब आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करो, जैसे नेत्रों का उपयोग करो भगवान का सुंदर विग्रह देखने के लिए, कानों का उपयोग करो भगवान का गुणगान सुनने के लिए, जीभ का उपयोग करो भगवान का गुणगान करने के लिए, नाक का उपयोग करो भगवान को अर्पित किया हुआ फूल इत्यादि सूंघने के लिए, पैर का उपयोग करो भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए या अपनी मोटर चलाने के लिए जो भगवान के मंदिर में ले जाए, और हाथों का उपयोग करो भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। तो भगवान ने जो आपको बुद्धि दी है इसका उपयोग करो उनकी सेवा में, फिर यह आत्मा स्वयं सफल होगा। और आगे भगवान क्या कहते हैं, और जीवन की शुद्धि ये कैसे प्राप्त होगा, कैसे जीवन की शुद्धि कैसे प्राप्त होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा 6000 पर मार जना, हृदय में मैल है गंध है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में अनर्था भी पुकारते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब हमारे आध्यात्मिक जीवन में के शत्रु हैं। तो हृदय की शुद्धि प्राप्त होती है भक्ति की विधियों का पालन करने के लिए। जब आप भक्ति की विधियों का पालन करो तो हृदय अस्ते अस्ते शुद्ध बनेगा, फिर इन शुद्ध नेत्रों से बुद्धि से आप भगवान को समझ सकोगे। जो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, मन की संयमता बनाने का अर्थ है इसे इंद्रियों से विलग करना। इंद्रियों से आप विलग कर सकते हो मन को जब आप इस श्लोक के उपदेश का लाभ उठाओ। तो आप सब भक्तजनों से यही विनती है कि आप कृपा करके इस शिक्षा का लाभ उठाइए। जैसे हमने कहा था आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है कानों के द्वारा। कानों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है आध्यात्मिक जीवन में। भगवान ने आपको कान दिए हैं किस लिए, सुनने के लिए। तो अगर आप इस दिव्य कथा को सुनोगे उपदेश को सुनोगे तो इसका असर तो पड़ेगा। जैसे कि भौतिक स्थिति में आप दवाई स्वीकार करते हैं मुंह के द्वारा, आध्यात्मिक दवाई स्वीकार करते हैं हम कानों के द्वारा। तो इस उपदेश को सुनो पढ़ो और हरे नाम का जप करो। हरे नाम के जप से इन चीजों का पालन करना सरल हो जाता है, सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान की शिक्षा का पालन करे। जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो शरीर के सारे अंग कमजोर होते हैं, पर एक ही स्थान में अन्न डालने से, कौन सा स्थान, पेट, पेट में खाना डालने से सारे अंगों में ताकत आ जाती है। इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शरण, उनकी शिक्षा का पालन करके हम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। और इस हरि नाम में इतनी शक्ति है कि ज्ञान से या ज्ञान से जो भी हरि नाम का उच्चारण करे वो इसका लाभ उठा सकेगा। तो आप सबसे यही विनती है कि आप सब चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा का लाभ उठाइए। चैतन्य महाप्रभु जी को सब अवतारों में सबसे दया दयालु अवतार माना जाता है और उन्होंने इस कलयुग के प्रजा को बहुत सरल उपाय दिया है। महाराज निम्मी तो यज्ञ कर रहे थे जिसमें हजारों पुरोहितों की आवश्यकता थी। अगर हम आप सबको कहें कि यज्ञ कीजिएगा घर जाके और अनेक पुरोहितों को बुलाना, आप कहोगे स्वामी जी ये तो संभव नहीं है। तो इस कलयुग में भगवान ने इतना सरल साधन दे दिया है, हरि का नाम बस। खरे दोषी निधराज नस्तिक महागुना कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघर्ष परम। कलयुग में दोषी दोष है पर एक गुण है, वो है कृष्ण का कीर्तन और आप सब इसका लाभ उठा सकते हो। तो यही है विनती आप सबसे, आप कृपा करके हरे नाम का जाप कीजिए और भगवत गीता भगवतम को पढ़िए, भक्तों की संगत का लाभ उठाइए। जब भी समय मिले आइए भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन प्राप्त करने के लिए। भगवान अपने आप को आर्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनके सामने प्रणाम करने के लिए, उनके लिए कीर्तन करने के लिए, उनके सामने नाचने के लिए, उनके खुशी के लिए ताड़ी मारने के लिए। इन सब कार्यों के द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। तो कृपा करके इसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण।